ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। एनडीए सरकार केंद्र में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष कार्यक्रम सेवा के 3 साल के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों का प्रसारण कर रहा है। इस विशेष कड़ी के अंतर्गत आज हमारे कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत हैं कोयला, ऊर्जा, खान और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल के साथ आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी की बातचीत।
आपकी सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित किए थे और आधे से कुछ अधिक समय बीत चुका है। विरासत में आपको समस्याएं मिली, कितना वक्त उनसे निपटने में लगा आपको लगता है?
मुझे लगता है हमारी सरकार की जो कल्पना है काम करने की, वो बहुत व्यापक रूप से समस्याओं का समाधान करने की है। हमने विरासत में कितनी भी तकलीफें पाई हों, चुनौतियों से भागे नहीं है, उसको एक एक विषय को सुधार करके एक ऐसी कल्पना की है कि देश सालों सालों तक ईमानदारी से अच्छे शासन के रूप में और जनता की सेवा के लिए काम कर सके, ऐसा आधारभूत परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा लेके हम चले। मुझे लगता है अभी तक बहुत अच्छी बढ़त हुई है, सफलताएं मिली हैं, देश की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है।
अपने मंत्रालय की आप किन विशेष उपलब्धियों को रेखांकित करना चाहेंगे?
देखिए, इस देश ने 70 वर्ष हो गए आजादी के, 70 वर्ष में कभी ऐसी स्थिति नहीं पाई थी कि कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जितना चाहिए जब चाहिए मिल रहा है, बिजली की कोई कटौती नहीं है, कमी नहीं है, देश के सभी डिस्कॉम मिलके 2 वर्ष के अंदर प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे उदय योजना के तहत। देश में 18,452 गांव थे जिनको बिजली नहीं पहुंची थी, कठिन गांव थे लेकिन आखिर किसी ने समस्या का हल करना था। मोदी जी ने पीछे पड़ के उसको लगभग अब सिर्फ 4,000 गांव रह गए हैं, वो भी 6-8 महीने में खत्म हो जाएंगे निर्धारित समय के अंतर्गत। पूरे देश में लगभग 4.5 करोड़ घर आज भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। ये आंकड़ा बहुत कम हुआ है 3 वर्षों में, आगे 2-3 वर्षों में हम लगभग इसको शून्य कर देंगे।
आपने कहा कि कोयले की पर्याप्त मात्रा है, तो क्या हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि कोयले का निर्यात भी संभव हो सके?
कोयले के निर्यात में 2 विषय हैं, एक तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसी में निर्यात होने की संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कोयला है उसमें लगभग 35 से 45% फ्लाई ऐश है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या विदेश भेजना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट करें तो लगभग आधा कोयले में तो कोई कैलोरीफिक वैल्यू रहती नहीं है। तो मैं समझता हूँ निर्यात करने में बहुत ज्यादा संभावनाएं इसमें नहीं है।
और जो अभी तक उत्पादन हुआ है उसमें हम आत्मनिर्भर बढ़ने की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं?
जितना कोयला डोमेस्टिक यूज हो सकता है उसमें हम 100% आत्मनिर्भर हो गए। हमारे यहाँ पे 2 समस्याएं हैं, एक कुकिंग कोल कम है जिसमें हम अभी तक इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, आयात करना पड़ता है विदेश से। दूसरा, पिछली सरकार के समय ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि देश में पर्याप्त कोयला उत्पादन हो सकेगा, जबकि हमारे पास विश्व की 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स है कोयले की। लेकिन इतनी लाचार थी सोच पिछली सरकारों की कि उन्होंने 1000 मेगावाट बिजली घर ऐसे बनाए जिसमें भारत का कोयला इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है फ्लाई ऐश के कारण। तो आज वो लाचारी हमें महंगी पड़ रही है कि कोयला ज्यादा है लेकिन इन प्लांट्स में फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वो डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल नहीं करता।
2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का एक लक्ष्य जब आपके मंत्रालय ने रखा है, तो अब क्या देख रहे हैं यहां से पीछे जब मुड़के देखते हैं कि अभी कितना और आगे सफर कैसे तेजी?
जब सरकार में आए थे हमने लक्ष्य रखा था 15 अगस्त 2022, जब सरकार के 75 वर्ष होते हैं तब हर घर को बिजली पहुंचे ये हम सुनिश्चित करें। जिस तेजी से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जनता की सेवा हो, जनता को सुविधाएं मिले, उसको रखते हुए हमने तय किया कि हम अगले 2-2.5 वर्षों में पूरे देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने में काम करेंगे।
समस्याएं कैसी आ रही हैं अभी जो आपके लक्ष्य हैं?
देखिए, हमें समस्या जैसे उत्तर प्रदेश में थी कि राज्य सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही थी, अब हमारी सरकार आई है तेज गति से वहां पे विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ है।
कि आपने खुद भी एक कहा, उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कहा था कि भ्रष्टाचार अगर दिखा तो अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।
एकदम, और उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उच्च स्तरीय लोगों को निकाला भी गया है और जिस प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के काम में लगे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रगति होगी विद्युतीकरण के क्षेत्र।
अक्षय ऊर्जा से आप कितना लाभ ले पा रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो चाहे वो पवन ऊर्जा हो?
आपको जान के खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एकदम ऊंचा लक्ष्य रखा था सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, उसमें पूरी दुनिया देख रही है भारत की प्रगति इतनी अच्छी हुई है। पहले ही तीन वर्ष में 370% ग्रोथ हुई है सोलर प्लांट्स में, सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी में, सौर्य ऊर्जा की। विंड में पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें पवन ऊर्जा में 5400 मेगावाट एक साल में ही ऐड हुआ, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एडिशन है एक साल के अंदर। इसी प्रकार से नदियों पे या डैम्स में बिजली बनती है। कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे जब हमारी सरकार आई, हमने उस पर बहुत कदम उठाए हैं कि वो भी तेज गति से शुरू हो सके। आपको जान के खुशी होगी सिक्किम में तीस्ता प्रोजेक्ट जिसमें 9000 करोड़ लग के वो फंसा पड़ा था, काम नहीं हो रहा था, केंद्र सरकार के प्रयत्नों से उसमें काम शुरू हुआ और 2017 मार्च में 1200 मेगावाट बिजली शुरू हो गई है वहां से उत्पादन होना। ऐसे पूरा विश्व जानता है और इस बात की सराहना करता है कि भारत आज विश्व के नेतृत्व कर रहा है नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा में। एक और विषय आपके समक्ष रखूंगा आपके श्रोताओं के, सौर्य ऊर्जा जो 3-4 साल पहले 7 रूपये, 6 रूपये, 8 रूपये की मिलती थी, आपको जान के खुशी होगी जो लास्ट बिड हुआ राजस्थान के बादला सोलर पार्क में, वहां पे 2 रूपये 44 पैसे में सौर्य ऊर्जा प्रति यूनिट सरकार को मिलेगी, वहां के डिस्कॉम को मिलेगी। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा में जहां जीबीआई दिया जाता था, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, साथ ही साथ कीमतें भी 4.5-5.5 रूपये थी, पिछली बार हमने 1000 मेगावाट सिर्फ नीलामी की तो पहले ही बिड में 3 रूपये 46 पैसे जो ऐतिहासिक लो है, इतना कम कभी नहीं हुआ है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत ने ईमानदारी से जो अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त नीलामी के माध्यम से खरीदी और बड़े रूप में इसको प्रोत्साहन दिया बड़े स्केल पे, उससे भारत में आज कीमतें कोयले की बिजली कीमतों से भी कम हो गई।
सौर ऊर्जा का हमारे पास अक्षय भंडार है और विदेशों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें आप ले रहे हैं किसी स्तर पर और नए जो वैज्ञानिक अनुसंधान?
देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कमिटमेंट जो उन्होंने पेरिस में भी कहा था कि जो जो वो सहयोग देंगे, सस्ते ब्याज में लंबे अरसे के लिए पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस सब में अभी तक विश्व स्तर पे मुझे लगता है अभी भी कमी है। उनकी तरफ से और पहल की आवश्यकता है जिसके लिए लगातार सरकार विश्व स्तरीय संस्थाओं से, अलग अलग देशों से चर्चा में है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दोहराया है, सौर्य ऊर्जा या पवन ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना वो देश हित में है। देश की जनता चाहती है कि प्रदूषण मुक्त हो भारत, देश की जनता चाहती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम सुरक्षित हों और कितनी भी कुछ समस्याएं आए, पवन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ये देश में कभी भी खत्म नहीं हो सकता।
अन्य मंत्रालयों से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है?
बहुत ही बढ़िया सहयोग मिलता है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे पर्यावरण मंत्रालय हो। हमने नवीकरणीय ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को जितना प्रोत्साहन देना
था, बजटीय आवंटन आपके मंत्रालय को किया गया
पर्याप्त, हमने जितना मांगा हमें मिला, क्योंकि इस सरकार का संकल्प है कि साफ सुथरी ऊर्जा जितना ज्यादा देश में आएगी वो देश हित में है। और अब तो कीमतें भी इतनी घट गई हैं और आप ये भी समझेंगे कि 25 वर्ष तक इतने कम कीमतों में ये ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा, जबकि और कोई स्रोत हो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते रहता है। सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, इन सब में तो खर्चे बढ़ने के बगैर उल्टे खर्चे घटते आगे चल के।
एक राज्य से जब दूसरे राज्य में बिजली ट्रांसमिशन होती है तो काफी लॉस होता है उसमें, उसके भरपाई के लिए क्या प्रयास?
वास्तव में ट्रांसमिशन लॉस तो हम नियंत्रण में ला पाए हैं, लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रांसमिशन लॉस को कर दिया है एक राज्य से दूसरे राज्य को जब जाती है। लेकिन जो कई राज्यों की कंपनियां हैं जिनका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में या चोरी के कारण या बिलिंग ठीक से ना करने के कारण या मीटरिंग नहीं होने के कारण, वो जरूर बड़ा गंभीर समस्या का विषय है। उस पर उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत हम राज्यों के साथ काम में लगे हुए हैं, उसमें सुधार हुआ है गत 2 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में इसमें और अधिक सुधार होगा। कुछ राज्यों में इसमें सहयोग नहीं मिल रहा था, अब जनता के आशीर्वाद से अब वो राज्य भी भाजपा के बन गए, उसमें भी अब हम बड़े रूप में सफलता पाएंगे, बहुत सुधार की हम पीछे।
ग्रामीण क्षेत्रों और बहुत दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए जो पीपीपी परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति कैसी है?
परियोजनाएं तो सरकार की अलग होती है, प्राइवेट सेक्टर अलग करते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहुंचानी है वो तो लगभग स्टेट के डिस्कॉम्स ही करते हैं, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टेंडरिंग के माध्यम से कोई जीत के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, अदरवाइज ये स्टेट के डिस्कॉम्स का ही काम।
ऊर्जा संरक्षण की दिशा में क्या मंत्रालय के प्रयास हैं?
देखिए, आज के दिन ऐसी स्थिति है कि भारत के पास पर्याप्त उत्पादन करने की ऊर्जा की क्षमता है, साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाना, इसमें ऐतिहासिक बढ़त हुई है पिछले 3 वर्षों में, यहां तक कि दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार वगैरह में जो पहले बहुत ही महंगी बिजली खरीदी जाती थी, हमने ट्रांसमिशन दक्षिणी राज्यों में इतनी बढ़ा दी है और अंडमान निकोबार में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नए काम कर रहे हैं, उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे इन सभी इलाकों में बिजली की कीमतें भी कम हुई हैं और आज उन डिस्कॉम्स को 10-11-12 रुपए में नहीं खरीदनी पड़ती है बिजली हर यूनिट पे, आज 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए में आराम से बिजली।
किसानों के लिए एग्री पंप सेट भी आपने कहा था।
हमने योजना बनाई है कि किसानों को अच्छी ऊर्जा दक्षता वाले पंप मिले, जिससे उनकी ऊर्जा की खपत कम हो, उससे उनको पानी का भी इस्तेमाल साइंटिफिक तरीके से कर सके और साथ ही साथ कई जगहों पे जहां ग्रिड नहीं है वहां सौर्य ऊर्जा से चलने वाले एनर्जी एफिशिएंट पंप्स हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें अब शुरुआत की है, पिछले 2-2.5 वर्षों में लगभग 1 लाख पंप देश में सौर्य ऊर्जा से चलने वाले लगे हैं, वो भी ऐतिहासिक है। 2014 तक मात्र 10-11 हजार पंप लगे थे सौर्य ऊर्जा के, मात्र 2 वर्ष में हमने उस फिगर को बढ़ा के लगभग 1 लाख कर दिया है, आगे चल के इसको और तेज गति से बढ़ाएंगे।
इन सारे कामों पर निगरानी रखने के लिए या ये सारे काम पारदर्शिता से हों उसके लिए क्या व्यवस्था है?
हमारे 3-4 लेवल्स की निगरानी रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए काम होता है। एक तो हर महीने देश के सभी राज्यों के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और अधिकारी हैं, ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हर राज्य में हैं, वो सभी हर महीने एक बार मिलते हैं केंद्रीय स्तर पे। उसके अलावा रीजनल स्तर पे वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, अलग रिव्यू मीटिंग्स होती हैं अधिकारियों की। मैं स्वयं अलग अलग राज्यों के साथ उच्च स्तरीय, कई बार मुख्यमंत्री स्तरीय या ऊर्जा मंत्री के स्तरीय पे बैठकें लगातार लेता रहता हूं। जिस जिस राज्यों में समस्या ज्यादा है उधर ज्यादा अधिक बैठकें होती है, जो राज्य ज्यादा उत्साह दिखाते हैं सुधार की उनके साथ स्वाभाविक है बैठक ज्यादा होती है। साथ ही साथ हर 6 महीने में देश के सभी राज्य के ऊर्जा मंत्रियों के साथ एक पूरा 2 दिवसीय सुबह से लेकर रात तक इंटेंसिव एंगेजमेंट और रिव्यू करते हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में रिव्यू किया था, उसमें बहुत एक्सटेंसिव रिव्यू रहा, ये हमारा 6ठा रिव्यू था। 3 वर्ष में 6 बार इतना एक्सटेंसिव रिव्यू हुआ है 2-2 दिन का, जिसमें मैं स्वयं पूरे समय बैठता हूँ ऊर्जा मंत्रियों के साथ।
भविष्य की कोई नई योजनाएं?
योजनाएं तो बहुत आनी है। सबसे पहला लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए, लक्ष्य है कि सभी डिस्कॉम्स को जो लॉसेज कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए, बिना बिजली की कीमतों को बहुत बढ़ाए, एफिशिएंसी सुधार करके लक्ष्य को पूरा किया जाए, सौर्य ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक लेके जाना है 2022 तक, पवन ऊर्जा को 60,000 मेगावाट तक लेके जाना है। जो जो प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़े हैं उत्पादन के, अलग अलग क्षेत्रों के थर्मल, हाइड्रो, इन सबको पुनर्जीवित करना है जिससे बैंकों का भी बोझा कम हो। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि देश में कभी भी कमी ना हो। ऊर्जा दक्षता के लिए हमने एलईडी बल्ब को प्रोत्साहन दिया है, लगभग 56 करोड़ बल्ब निजी क्षेत्र में, 33 करोड़ सरकारी क्षेत्र से, 23 करोड़ बिक चुके हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपए का लाभ जनता को हो रहा है। ऊर्जा कम लग रही है, ऊर्जा के बिलों में कटौती हुई है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और आगे चल के और बहुत नई योजनाएं लेके ये सरकार लगातार गांव के गरीब की, जो वंचित रहे हैं बिजली से इतने वर्षों तक, उनकी, किसानों की सेवा में लगातार लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी।
आपको इन सब कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए हृदय से आभार।
धन्यवाद।
विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोयला, ऊर्जा, खान और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल के साथ आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है AIR NSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।